मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे प्री एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ जो दूसरी खबरें हैं उन पर एक नजर मार लेते हैं। आज मैं आप सबको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं ए रेयर अर्थ्स पर, व्हाई इंडिया शुड बिकम ए रेयर अर्थ्स पावर हाउस। इसमें शब्द है रेयर अर्थ्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर यह आर्टिकल छपा है तो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए कि ये रेयर अर्थ क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट जिसमें 17 तत्व शामिल हैं। ये आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसे देखिएगा। इसका संक्षिप्त फॉर्म जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग हिंदी में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अब हमें अपने पैटर्न को यूपीएससी जो साइंस के क्वेश्चंस बढ़ाती चली जा रही है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बढ़ाती चली जा रही है, अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी पर पूछने लगी है, तो डेफिनेटली हमें उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। उसी के तहत मैंने केवल एक टर्मिनोलॉजी जो रेयर अर्थ से संबंधित है उसकी जानकारी देने के लिए यह जो आर्टिकल है आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों एक और टर्मिनोलॉजी है जो आज मुझे पढ़ने को मिली, ONDC, शायद इसके बारे में आप जानते होंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 27 जून यानी कि आज जो उत्तर प्रदेश है इससे जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। किससे जुड़ने वाला? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। भास्कर ने इस पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की स्टोरी लिखी है, प्रैक्टिकल किस्म की स्टोरी। इसका मतलब यह है कि देखिए ई कॉमर्स है, जैसे मान लीजिए कि मेरी अपनी कंपनी है, मुझे अपना कोई सामान बेचना है तो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है उस पर मैं अपना सामान बेचूंगा, लेकिन ये जो नेटवर्क होगा इस नेटवर्क पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वे भी अपना सामान बेच सकेंगे। यानी यूं कह लीजिए कि जो ऑनलाइन में अपना काम कर रहे हैं ऑनलाइन से और जो ऑफलाइन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक प्रकार से समान रूप से मौका मिल पाएगा। तो आपको यह जानना चाहिए कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हो जाएगा और पहला राज्य बनेगा इसमें शामिल होने वाला, तो आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर हासिल कर लें। एक छोटा सा आर्टिकल मुझे भोजपत्र के बारे में पढ़ने को मिला जो हिमालय के जंगलों में इसके पेड़ मिलते हैं, और खासकर सच पूछे तो मैं थोड़ा सा नॉस्टेल्जिया में आ गया, यानी कि अतीत मोह में घुस गया, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मसूरी ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों की जो ट्रेकिंग की ट्रेनिंग होती थी तो हम लोगों का जो ग्रुप था वो गंगोत्री गया था, गंगोत्री से फिर गोमुख हम लोग पैदल गए थे, तो रास्ते में एक स्थान पड़ता था भोजवासा। असली में जो भोजवासा है उसका नाम इसी भोजपत्र के पेड़ पर पड़ा है, और आप जानते हैं कि जो भोजपत्र है उस पर हमारी प्राचीनतम पांडुलिपियां लिखी भी मिलती हैं। भोजपत्र आप सबने देखा है, देखने में भी बड़ा प्यारा लगता है। तो दोस्तों एक अच्छी खबर यह है कि जो भोजवासा नामक स्थान है वहां पर चूंकि भोजपत्र के जो वृक्ष थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे तो अब फिर से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई और अब काफी कुछ भोजपत्र के पेड़ वहां दिखाई देने लगे हैं। तो ये हिमालय का जो गंगोत्री क्षेत्र है, बस समझ लीजिए कि वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है। पहले वहां गर्भपात का अधिकार था, सीनेट अब उसको गर्भपात के अधिकार को वापस लेने जा रही है, इस पर एक बहस से छिड़ गई है, तो अभी देखते हैं कि अंजाम क्या होता है, अंतिम परिणाम क्या होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इकोनॉमिक टाइम्स ने बकायदे इस पर एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया है वो मैं आपको दे रहा हूं, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर आर्टिकल भी लिखा, ये दोनों मैं आपको दे रहा हूं। हम लोग इसका संक्षिप्त फॉर्म कोशिश करेंगे कि हिंदी में आपको उपलब्ध करा सकें। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विमेन राइट से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण या महिला अधिकार से संबंधित है। जब अमेरिका जैसे देश में खासकर उस अधिकार से वंचित करने की कोशिश हो रही है, डेफिनेटली ये एक सोचने की बात है, इस दृष्टि से आप इसे देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, भला ही छोटा सा है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ब्रिक्स की अप्रासंगिकता, कुछ अभी ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली संबोधित किया था। ब्रिक्स के बारे में आप जानते हैं, 5 देश इसके सदस्य हैं जिसमें चीन भी है और भारत भी है। तो किस तरीके से धीरे 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 ये जो संगठन है ये कमजोर पड़ता जा रहा है, और चूंकि भारत इसका सदस्य है तो आपके लिए यह टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मेन्स की दृष्टि से। प्री में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज इससे 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं उन्हें आप जरूर नोट कर लें। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय का मैंने जानबूझकर शीर्षक रखा है रिस्क तो लेना पड़ेगा। प्री एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ गए हैं, ढेर सारे युवाओं की प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं। मैंने पहले भी बताया था हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बहुत से सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं। जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनमें निराशा का भाव है, और जो सेलेक्ट हो गए हैं उनमें बहुत उत्साह का भाव है, और वो बता रहे हैं कि सर किस तरीके से ऑनलाइन के जो लेक्चर्स हैं उनने हमारी मदद की, और उसमें ये बताया गया था तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन बन गया, इसकी वजह से ये क्वेश्चन बन गया। तो ढेर सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। इसी तरह की जो 1-2 प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही हैं कि आपके साथ शेयर करूं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी को एक सही रणनीति के तहत आगे बढ़ा सके। दोस्तों एक मेरे पास जो मेल आया है, लेकिन उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि मैं उनका नाम डिक्लेयर न करूं, तो मैं नाम बताने नहीं जा रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मेरे बात पर आप विश्वास करें कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं शब्दशः वह सच है। इनका सिलेक्शन हो गया है, राइट, प्री में ये क्वालिफाई कर गए हैं। तो प्री में जो क्वालिफाई इन्होंने किया है, तो अब इन्होंने कुछ डिटेल्स लिखी हैं, उस डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, ताकि आप एक सही रणनीति बना सकें। और यदि आप भी एग्जाम में अपीयर हुए और सफल नहीं हो सके तो उसके उस पर एक विचार कर सकें कि ऐसा क्यों हुआ, मुझसे कहां चूक हुई। इसलिए मैंने आज के विषय का नाम रखा है रिस्क तो लेना पड़ेगा। इन्होंने प्लान किया था कि मैं एग्जामिनेशन में 90 क्वेश्चंस बनाकर आऊंगा। चलिए आप प्लान करके जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो ये केवल 84 क्वेश्चंस बना पाए, मतलब 60 क्वेश्चन इनके छूट गए। इसमें यह क्लियर नहीं हुआ कि वो 100 तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, किस तरह के क्वेश्चन जो 16 छूटे हैं वो थे, लेकिन इन्होंने लिखा है कि 84 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए। और फिर जब इन्होंने मिलाया आंसर शीट से, जो भी अवेलेबल कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो इसमें इनको लगा कि मेरे आउट ऑफ 84, ध्यान दीजिएगा आउट ऑफ 84, देखिए अगर आप केवल सुनेंगे और कान से निकाल देंगे बात खत्म हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी, आपको एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। आप इन आंकड़ों को लिखिए और इसके बाद एनालाइज कीजिए, तब जाकर के कुछ हो पाएगा, है ना। तो आउट ऑफ 84 इनका कहना है कि 58-60 करेक्ट हुए, 58-60 इनके करेक्ट हुए, ठीक है, करेक्ट केवल 58-60 हुए। इसका मतलब है कि या तो 24 या 26 गलत हो गए। अब आप देखिए कि वो 84 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें से 24 या 26 गलत हो रहे हैं। रिस्क लिया उन्होंने और सेलेक्ट हो गए। जहां तक सी सेट का सवाल है, सी सेट में उन्होंने लिखा है कि आई अटेम्प्टेड 49, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, आई अटेम्प्टेड 49 एंड फाउंड कि इसमें से 15 या 16 गलत हो गए, 49 में 15 या 16 गलत हो गए। चूंकि मेंस के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया है तो सी सेट में भी इनका सिलेक्शन हो गया। अब आप देखिए कि जो गलत हो जो प्रश्न हुए हैं उनकी संख्या कम नहीं है। मोटे तौर पर अगर हम कहें कि आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें से 15-16 आपके गलत हो रहे हैं, तो हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत इस बात के लिए चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा 33% मार्क्स डिडक्ट हो जाए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है हम क्या चाहते हैं कि उसे हम बटोर कर करके रखें, उसे बिल्कुल पकड़ करके रखें, इसमें से कुछ जाने न पाए। जब हम ये विचार लेकर के चलते हैं कि नहीं इसमें से नहीं कम होना चाहिए, तो याद रखिए कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दिमाग में यह भी विचार होता है कि आने भी ना पाए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि आप सारे बॉल पर हिट लगाएंगे, नॉट एट ऑल। सारे बॉल को आप नहीं मार, छक्का समझ करके जो रिस्क लेंगे आप एक पर्टिकुलर जोन के तहत रिस्क लेंगे। और मैंने बड़े बाकायदे आप लोगों को पहले भी बताया था और लगातार मैं कहता रहता हूं कि अगर आप दो एलिमिनेट कर सकते हैं और दो में कंफ्यूज हैं तो फिर आपको रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां जो गेन है वो 100% है और जो लूज है वो 33% है और चांसेस 50-50% के हैं सही और गलत होने के। तो अंततः आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बस ये बताने के लिए मैंने ये एक सच्ची जो स्टोरी है वो आपके सामने रखी है, और जिन्होंने ये रिस्क नहीं लिया उस तरह की स्टोरीज भी मेरे पास हैं, उनकी चर्चा मैं समय आने पर आप सबसे करूंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: क्षीर सागर भरत विश्वनाथ महाराष्ट्र से, अजय कुमार वर्मा, राजेंद्र कुमार पटेल महासमुंद छत्तीसगढ़ से, और अमित कुमार सिंह कोची से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।